हरे कृष्ण। तो आज का चर्चा का विषय है, हम लोग चर्चा करेंगे श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, पुराण क्या है, संहिता क्या है, और वेदों का विभाजन किया गया तो किन कारणों से किया गया, और तीन ऐसे कौन से रास्ते हैं जिसके द्वारा हम जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और सबसे व्यवहारिक और सुलभ तरीका कौन सा। कबूतर कहाँ से आ गया इधर सेमिनार हॉल में? इधर से आया कबूतर, उसको उसको बाहर निकालना होगा, तो अंदर ही घूम रहा है वो। नहीं तो दरवाजा खोल देंगे चला जाएगा बाहर। ओह अच्छा, इसमें बैठे अंदर। अच्छा अच्छा, तो गड़बड़ है, कबूतर खाना मन रहा था। भक्तों से ज्यादा कबूतर की संख्या बढ़ रही है। तो वैदिक प्रस्थान, इसको वैदिक प्रस्थान कहते हैं या प्रस्थान त्रय कहते हैं। तीन रास्ते हैं जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। पहला बताया गया है श्रुति। श्रुति, श्रुति का मतलब है श्रवण करना, यानी कि ज्ञान प्रकट होता है श्रवण से और स्वीकार करने से, उसको श्रुति कहते हैं। और इस इन श्रुति को जानने के लिए, श्रुति यानी कि उपनिषद को भी श्रुति कहा गया है, और चार वेद हैं इनको भी श्रुति कहा गया है। इनको जब सुना जाता है, शिष्य गुरु से सुनता है, तो इसके लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि योग्य बनना होगा इस श्रुति को समझने सुनने के लिए। सुनने के लिए योग्य बनना पड़ेगा, यानी कि समझ लीजिए आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहते हैं, MBA का कोर्स करना चाहते हैं, तो ज्वाइन करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि उसके कोर्स के कंटेंट्स क्या हैं और कोर्स में क्या सिखाया जाएगा। कोर्स के डिटेल्स आपको पहले से ही पता होने चाहिए, ये योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो ये योग्यता की आवश्यकता पड़ती है श्रुति को समझने के, वेद इसको कहते हैं। और वेद के लिए द्विज होना आवश्यक है, द्विज मतलब योग्य ब्राह्मण होना आवश्यक है, नहीं तो वेद का पाठ नहीं किया जा सकता है। दूसरा है ब्रह्म सूत्र, जिसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं, वेदांत सूत्र भी कहते हैं। जब श्रवण ही अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है तो ज्ञान जो है वो न्याय के द्वारा हृदय में प्रकट होता है, लॉजिक के द्वारा प्रकट होता है, लॉजिक के द्वारा प्रकट होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वेदांत सूत्र कहते हैं, या फिर न्याय शास्त्र कहा जाता है, न्याय शास्त्र। और इसके लिए बहुत अधिक बुद्धिमान होना आवश्यक होता है। तो कलयुग में ये दोनों ही बातें नहीं है, योग्यता नहीं है और विद्वत्ता नहीं है। आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए, विशेष रूप से जो श्रुति और ब्रह्म सूत्र को समझने के लिए, योग्यता और विद्वत्ता की कमी है। और तीसरा आता है स्मृति प्रस्थान, तीसरा रास्ता है। ये तीन रास्ते हैं जिसके द्वारा हम आनंद की प्राप्ति करते हैं या अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो इसको स्मृति प्रस्थान कहते हैं। और स्मृति प्रस्थान में भगवद्गीता आ जाता, भगवद्गीता आ जाता। और ये जो भगवद्गीता है, भगवद्गीता को कोई भी स्वीकार कर सकता है। और स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में कह रहे हैं, जो भी इस पथ को अपनाता है, जो भी इस रास्ते को अपनाता है, वो पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने गीता में ये बात कही है, कोई भी इस मार्ग में चलता है तो उसको सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, सर्वोच्च सुख प्राप्त हो सकता है। तो भगवान स्वयं गीता में इसका आश्वासन दे रहे हैं। तो स्मृति प्रस्थान में रामायण आ जाता है, महाभारत है, पुराण है, इतिहास इसको कहते हैं। और स्मृति का मतलब है जिसको याद किया जाता है, याद किया जाता है। इन पुराणों में, इतिहास में क्या है, उन महान पुरुषों की कथाएं हैं, महाजनों की कथाएं हैं, जिनके पचनों पर हम चल सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में 12 महाजनों की कथा है, विशेष रूप से 12 महाजनों की शिक्षाएं हैं, और उनके पचनों पर हम चल सकते हैं। स्वयंभू नारदो शंभु प्रहलादो भीष्म जनको कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो भीष्म फिर क्या है बलिर्वया सकीर्वया। तो ये यमराज जी कह रहे हैं हम हैं 12 महाजन। तो ये 12 महाजन के पद चिन्हों पर चला जा सकता है उनकी शिक्षाओं को देखते हुए, और साथ में उनका जो साक्षात्कार है उसको अपने जीवन में उतारते हुए। तो इसको कहते हैं स्मृति प्रस्थान। तो महाभारत जैसे है ग्रंथ है, वो लिखा गया था सामान्य जनमानस के लिए, जिनके पास इतनी बुद्धि नहीं है उनके लिए महाभारत प्रस्तुत किया गया श्रील व्यासदेव के द्वारा, जो कि श्रीमद् भागवत से पहले लिखा गया था। कथाएं हैं बहुत सारी इसमें, कथाओं के माध्यम से भगवत संदेश दिया जा रहा है। बहुत सारी कहानियां हैं महाभारत में, कहानियां ही कहानियां भरी हुई है, कथाएं भरे हुए हैं, लेकिन उन कथाओं के बीच में भगवान का संदेश है। भीष्म पर्व में जिस तरह से अंगूठी में आप जेम स्टोन लगाते हैं या नग लगाते हैं तो उस अंगूठी का मूल्य बढ़ जाता है कि नहीं। तो इसी तरह से महाभारत के इस भीष्म पर्व में भगवत गीता है, भगवान का संदेश है, भगवान का संदेश। तेल का कुआं है, उसमें बीच में दिया जल रहा है, लैंप जल रहा है, तो वो जो लैंप है वो भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है, भगवान का, भगवान के द्वारा बोला गया संदेश, भगवत संदेश। तो इस प्रकार ये बातें यहां बताई गई। अब पुराण क्या है, पुराण बेसिकली केसेस प्रेजेंट करता है, केसेस प्रेजेंट करता है। वेद में क्या है, बेसिकली कोड्स हैं, सूत्र हैं, जो ब्रह्म सूत्र है उसमें कोड्स हैं, उसमें केसेस नहीं है, केस लॉज होते हैं ना। अब एक लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए केस लॉ प्रेजेंट किया जाता है, आपको पता है ना ये बात, सेक्शन आईपीसी सो एंड सो अगर एक लॉ है तो उस लॉ को साबित करने के लिए एक केस प्रेजेंट करना होता है वकील को, तो उस केस लॉ को पुराण कहते हैं। इस समझने का एक और तरीका। तो पुराणों में कथाएं हैं बहुत सारी, लेकिन ये कथाएं महाभारत की तरह कहानियां नहीं है सिर्फ, ये कोई सामाजिक कथाएं नहीं है। भागवत की जो कथाएं हैं वो वैदिक शास्त्रों की ही बातों को प्रमाणित करने के लिए है, इसलिए पुराणों का भी उतना ही महत्व है जितना कि वेद का। लेकिन पुराण महाभारत इतिहास जो है इसको स्मृति कहा जाता है, जिसको समझा जाता है वो भी परंपरा के माध्यम से। तो वेद, वैदिक ज्ञान का जो ये वृक्ष है ये 4 भागों में बांटा गया है। बहुत हर जगह कबूतर है। अच्छा, तो इसमें कई शाखाएं हैं इस वृक्ष में, अभी रहने दीजिए, इसमें कई शाखाएं हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये अलग अलग शाखाएं हैं। और इसके फूल क्या है, धर्म, अर्थ और काम, ये इसकी शाखाएं हैं। और जो पका हुआ फल नहीं है, अनराइपेंड फ्रूट है, कच्चा फल जिसको कहते हैं, कच्चा फल क्या है, उपनिषद और वेदांत सूत्र, और पका हुआ फल क्या है, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत पका हुआ फल है। तो ये 4 बातें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन वेदों की खासियत ये है, इन पुराणों की खासियत ये है, इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया, अमेंडमेंट नहीं किया गया, और इसको कभी गलत साबित नहीं किया गया, ना ही कोई कर पाया है। वेद वाक्य को, पुराणों के वाक्य को या जो शास्त्रों में दिए गए हैं इन बातों को कोई गलत साबित नहीं कर पाया है, आज तक नहीं कर पाया। भगवद गीता के शास्त्र और श्लोक यथारूप हैं। हाँ, उसका तात्पर्य अलग दिया गया हो जो कि यथारूप नहीं है, लेकिन जहां तक श्लोक की बात है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आज तक किसी ने किया नहीं, क्योंकि ये त्रुटि रहित है, ये अपौरुषेय कहा जाता है। इसको अपौरुषेय का मतलब होता है कि यह किसी साधारण पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया, यह मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया। ये वैदिक शास्त्र, ये पुराण, ये मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे, अपौरुषेय कहा गया है, ये भगवान के द्वारा बोला गया है, भगवान के द्वारा। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की स्थापना स्वयं कौन करते हैं? भगवान करते हैं, भगवान करते हैं। तो इसलिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उदाहरण जो प्रस्थान त्रय है, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान, तो इसमें सबसे सरल क्या है? स्मृति प्रस्थान, जिसमें भगवद गीता का ये ज्ञान आता है, जो सबके लिए है, पुराण सबके लिए है। यहां तक कि मलेच, यावन, चंडाल भी पुराण खोल के पढ़ सकते हैं। वेदों में जो वेद के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, उनके स्पेसिफिक मीटर्स होते हैं, उसको स्पेसिफिक साउंड वाइब्रेशन में उसका उच्चारण करना होता है, उसके लिए योग्य ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है जो ऐसा कर सकते हैं। कलयुग में ऐसे ब्राह्मण बड़े दुर्लभ है, लेकिन पुराणों के लिए ऐसा नहीं है। यानी कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण में अगर एक अक्षर का भी अंतर आ गया तो हो सकता है उसका पूरा अर्थ ही बदल जाए। अर्थ क्या उसका? फिर आपको जो फल भी जो है कुछ और ही प्राप्त होगा, गलत मंत्र उच्चारण से आपको उल्टा फल प्राप्त हो जाएगा, इसलिए सबके लिए नहीं होता। लेकिन भागवत जो पुराण है, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरि नाम है, ये भागवत मार्ग का, हरि नाम जो है ये भागवत मार्ग की विधि है, इसलिए हरि नाम का उच्चारण कोई भी कर सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है क्योंकि ये कोई भी कर सकता है तो ये सस्ता हो गया। इसका अर्थ ये है कि सबके लिए, इसका अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है सर्वसिद्धि की प्राप्ति कर सकता है इस मार्ग को अपना के। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया, भगवद गीता का अनुवाद किया। तो ये इससे क्या है कि कोई भी योग्य हो या ना योग्य हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी कुल का हो, वो इसको पढ़कर अपने जीवन में लागू करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो ये था कुछ श्रुति। जैसे हमने बताया, श्रुति का मतलब ये है कि जो कि सुना जाता है, चार वेद और उसकी शाखाएं, ऋग, ऋग वेद, एक एक करके हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऋग वेद, ऋग वेद में करीब 1028 ऐसे, आप उसको मंत्र कह लीजिए या श्लोक कह लीजिए, और इसमें विशेष रूप से अलग अलग देवताओं की स्तुति की जाती है, जिस प्रकार, जिस तरह से इंद्र की उपासना की जाती है, अग्नि की पूजा की जाती है, और ऐसे अन्य 31 देवताओं के बारे में बताएगा। 33 हो गए ना, 31 और 2 33, कई बार हम बोलते 33 करोड़ देवी देवता है, वास्तव में 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, उनका परिवार है, 31 देवी देवताओं का परिवार है, 33 देवी देवताओं का परिवार है, और वो करोड़ों की संख्या में। जैसे एक, जैसे इंद्र है, अब उनका अपना अमरावती है, उनका राज्य है या जो भी है जिस स्थान में रहते हैं, तो वहां रहने वाले जो भी वहां पर निवासी है वो सब देवता ही है, असुर थोड़ा है वो सब, तो वो सब काउंटेड है इसमें 33 करोड़ में, लेकिन मुख्य रूप में केवल 33 ही हैं, यानी कि 33 डिपार्टमेंट्स हैं कहने का अर्थ ये है, और साथ में उनके सहयोग देने के लिए लाखों की तादाद में देवी देवता हैं जो उनका सहयोग दे रहे हैं। प्रमुख जो देवता है, प्रमुख देवियां हैं या देवता है, वो केवल 33 ही बताए गए, और इनसे वरदान मांगा जाता है धन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रक्षा हेतु या विजय के लिए। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद माना गया है, यानी कि ऋग्वेद से अन्य तीन वेद निकले हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट वेदा वेद क्या और ओल्डेस्ट क्या वेद, वेद का कोई वेद की कोई तारीख तो है नहीं। प्रभुपाद कहते ना वेद, किसी ने पूछा प्रभुपाद से लंदन में कि वेद की शुरुआत, शास्त्र की शुरुआत कब हुई, वेद की शुरुआत कब हुई, तो प्रभुपाद ने कहा वेद का मतलब ज्ञान होता है संस्कृत में, तो ज्ञान की शुरुआत होती है क्या, कोई तारीख है इस दिन इस तारीख में इस महीने ज्ञान की शुरुआत हुई, तो ऐसा तो कभी होता नहीं। तो वेद का मतलब ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी ऋग्वेद की जो रचना हुई है उसमें से ही अन्य सारे तीन अन्य वेद निकले हैं। और अगला जो सामवेद है, तो सामवेद में बेसिकली क्या है सिखाया जाता है, जैसे 1500 ऐसे गीत हैं जिनका उच्चारण किया जाता है विशेष रूप से, विशेष मीटर्स में, स्पेसिफिक मीटर्स में उच्चारण किया जाता है सामवेद। संगीत की जो शिक्षा है उस सामवेद में पाई जाती है, सामवेद। और भी कई उसमें उपदेश हैं, जैसे कि यज्ञशाला कैसे बनाए जाए, उसमें काफी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। और अथर्ववेद 6000 श्लोकों में से 1200 जो श्लोक हैं वो ऋग्वेद से लिए गए, अथर्ववेद। और अथर्ववेद, और क्षमा करिए इससे पहले यजुर्वेद के बारे में बता दें आपको, यजुर्वेद, यजुर्वेद यानी कि यज्ञ में जो मंत्र उच्चारण होते हैं और यज्ञशाला का निर्माण और नाना प्रकार के यज्ञों के बारे में वर्णन किया जाता है। कई प्रकार के यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ है, अग्निशोम यज्ञ है, राजसु यज्ञ है, कई प्रकार के यज्ञ बताए गए, तो इन यज्ञों के बारे में जानकारी दी गई है यजुर्वेद में। और अथर्ववेद जैसे मैंने बताया, जो ऋग्वेद के जो 6000 जो श्लोक है उसमें से 1200 जो है इसमें से लिए गए हैं, और ये सबसे आखिरी वेद बताया गया जो औषधि का ज्ञान है, आयुर्वेद जिसको कहते हैं, आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो भी अथर्ववेद में पाया जाता है। कई पाश्चात्य जगत के लोग, विशेष रूप से जर्मन्स जो आए थे, जर्मन्स जो है, अगर आप जर्मनी में जाएंगे तो आज भी वहां के कई बड़े बड़े पुस्तकालयों में, उनके शोध संस्थान में संस्कृत भाषा में कई ऐसी पांडुलिपियां मिलेंगी जो वास्तव में भारत से, यहां पर भारत से गई, वहां यहां से वो चोरी करके ले गए। इसलिए कई आपको जर्मन्स मिलेंगे जो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हैं, आज भी जर्मन्स हैं संस्कृत के स्कॉलर्स, और लेकिन जो चोरी उन्होंने की यहां से, आकाश पटोल, कई प्रकार का ज्ञान शास्त्रों में छुपा हुआ है, यानी कि कालीन बिछाया और कालीन के ऊपर बैठे और उड़ के चले गए। तो ऐसे कई प्रकार के सूक्ष्म ज्ञान है, विज्ञान है, भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है, बहुत सटल साइंस है, सूक्ष्म विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है हमारे इन शास्त्रों में, जिनको चुराया गया इन लोगों के द्वारा। और तो आयुर्वेद ऐसा ज्ञान है जिसमें आयु का मतलब आयु, लाइफ, और वेद का मतलब ज्ञान, यानी कि जीवन के बारे में, इस लाइफ के बारे में, इस प्राण के बारे में, इस देह के बारे में ज्ञान, और इस देह इसको स्वस्थ रखने के लिए, लंबी आयु के लिए क्या क्या आवश्यकता है और उसके लिए क्या क्या औषधियां हैं, तो इस प्रकार जानकारी मिलती है अथर्ववेद में। तो इनमें कई मंत्र ऐसे दिए हैं जिनका उच्चारण जो है केवल यज्ञ के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि रोज करने के लिए भी ऐसे कई मंत्र दिए गए हैं जिनका उच्चारण करने से लाभ मिलता है। और व्यास देव जी ने क्या किया, वेदों का विभाजन कर दिया चार भागों में। वेद जब है ये सारे के सारे एक साथ मिल जाते हैं और इनका उच्चारण जब किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, इसका जब उच्चारण किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा तो उसको कहते हैं संहिता, स्तोत्र के रूप में, एक गीत के रूप में, जैसे ब्रह्म संहिता है। ब्रह्म संहिता आपको एक स्पेसिफिक मीटर में बोला जाता है, तो उसमें बेसिकली वैदिक शास्त्र के ही आपको ज्वेल्स मिल जाएंगे। वेदों के जो रहस्यमय बातें हैं या उसमें जो छुपी हुई बातें हैं, रहस्यमय बातें हैं, छुपी हुई बातें हैं, ज्वेल्स हैं जो उसमें, उसमें जो रत्न है, उसमें जो मणि है, उसका जब उच्चारण किया जाता है उसको संहिता कहते हैं, संहिता कहते हैं। और जो उसको विभाजित किया जाता है तो वो चार भागों में फिर बांटा गया, व्यासदेव जी के द्वारा लिखा गया, व्यासदेव जी ने इसको लिखा। तो व्यासदेव जी वाङ्मय अवतार बताया गया भगवान, लेकिन देखा जाए तो मूलतः ये वैदिक ज्ञान भी जो है, जैसे कि भागवत चतुर्श्लोकी भागवत है, ये भगवान के द्वारा दिया गया ब्रह्मा जी को, भागवत को चार श्लोकों में दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने इसका उच्चारण किया, परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ और फिर व्यास देव जी ने इसको लिख दिया और इसको चार भागों में बांट दिया। किस लिए बांटा? आने वाले कलिकाल के लिए। तो ये इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात। तो प्रभुपाद लिख रहे भागवतों में, आफ्टर द वेदास वर डिवाइडेड फोर डिविजन्स, पहला ऋषि बिकेम द प्रोफेसर ऑफ ऋग्वेद। अच्छा, व्यासदेव जी ने क्या किया, अलग अलग जो है दार्शनिकों को और अलग अलग जो विद्वान जनों को, प्रोफेसर्स को, इनको दिया ताकि इसको आगे पढ़ाया जाए। तो उसमें पहला ऋषि थे जो ऋग्वेद के शिक्षक थे, जैमिनी ऋषि थे सामवेद के, और वैशंपायन थे जिन्होंने यजुर्वेद का गुणगान किया, और सुमंतमणि अंगीरा, उनको अथर्ववेद दिया गया। और साथ में यह बता रहे हैं कि मेरे पिता रोमहर्षण सूत को पुराण दिए गए। कौन बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, उग्र श्रवा सूत और रोमहर्षण सूत। तो रोमहर्षण सूत जो है उनको दिया गया, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि बलराम जी को पहचान नहीं पाए, इसलिए ब्राह्मणों ने उनको हालांकि इतना ऊंचा स्थान तो दिया, लेकिन बाद में उनको वहां से उतरना पड़ा, बलराम जी को नहीं पहचान पाए, बलराम जी ने उनको समाप्त कर दिया, योग्य नहीं है इसके लिए व्यास आसन में बैठने के लिए। तो बाद में फिर उन्हीं के सुपुत्र को ये शक्ति प्रदान की गई कि आगे ये पुराणों की व्याख्या कर सके, भागवत पुराण की व्याख्या कर सके। तो ये इस प्रकार से है। अब कई प्रकार के जो है ब्राह्मण अलग अलग जो है वेदों से निकले, ऋग्वेद के ब्राह्मण अलग थे, सामवेद के ब्राह्मण अलग थे, यजुर्वेद के ब्राह्मण अलग थे, इन सबके अलग अलग नाम के ब्राह्मण हुए हैं। अच्छा, उपनिषद का मतलब क्या है? उपनिषद का मतलब है कि उपनिषद यानी कि शिक्षक के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। 108 उपनिषद है। भक्तिवेदांत ठाकुर ने एक ग्रंथ का प्रकाशन किया, 12 एसेंशियल उपनिषद। 108 में से उन्होंने 12 उपनिषद का ही प्रकाशन किया। और प्रभुपाद ने तो एक जगह बोला है प्रवचन में 1968 27 नवंबर, प्रभुपाद कह रहे हैं आउट ऑफ दैट 9 उपनिषद आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद ने 9 उपनिषद बताए हैं। क्यों इन उपनिषदों के बारे में बताया प्रभुपाद ने कि यही महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन उपनिषदों में विशेष रूप से भक्ति की चर्चा की गई, भगवान की चर्चा की गई। श्वेतास्त्र उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, ऐत्रीय उपनिषद, ईशो उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, कठोपनिषद, तो ये सब बड़े महत्वपूर्ण है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप देखिए हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं या प्रभुपाद जी को भी हम देखें, भगवद गीता जो पढ़ेंगे, तात्पर्य में पढ़ेंगे, तो इन्हीं उपनिषद से प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, सारे उपनिषद से नहीं दे रहे, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि शास्त्र को भी हमें गुरु और साधु के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या लाभकारी है, नहीं तो क्या होगा, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्ते ब्रह्म होए। बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारे उपनिषद पढ़ लिए, सारे वेद पढ़ लिए, तंत्र भी पढ़ लिए, कंफ्यूज हो गए, उसका मर्म क्या है नहीं समझ पाए, एसेंस क्या है, निचोड़ क्या है। जैसा भी हमने बताया था, हमने बताया था ना तीन प्रकार के रास्ते हैं, कौन कौन से बताए रास्ते? पहला रास्ता क्या बताया था हमने? श्रुति और स्मृति और एक और कुछ बताया था, न्याय, वेदांत दर्शन, ब्रह्मसूत्र। और इसमें हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है और लाभकारी है और आसान है समझना, वो क्या है? स्मृति, जिसको कहते हैं उसमें भगवद गीता आ जाता है। तो भगवद गीता भी उपनिषद है कि नहीं? उपनिषदों में होता क्या है? सामान्य रूप से उपनिषदों में गुरु और शिष्य के बीच में चर्चा होती है। अब आप पूछेंगे भगवद गीता में तो गुरु और शिष्य के बीच में चर्चा नहीं है, गुरु और शिष्य के बीच में ही चर्चा है भगवद गीता में भी, क्योंकि अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया। आप समझ रहे बात? शिष्य स्तम शारी त्वामाम प्रपन्नम, तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अब आपका शिष्य हूं, मुझे स्वीकार करें, मुझे उपदेश दें, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। तो इसको इसलिए उपनिषद कहा जाता है। और सामान्यतः ये भगवत चर्चा के ऊपर होता है गुरु और शिष्य के बीच में। और इस तरह से इसमें जो भौतिक विचार है उपनिषदों में, इसको दूर किया जाता है, भगवत विचार को स्थापित किया जाता है, भगवत विचार को स्थापित किया जाता है। और इस ब्रह्मांड का जो आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है बताया जाता है, इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है, इसके सृष्टि के पीछे आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है, ट्रांसेंडेंटल पर्पस क्या है। मटेरियल पर्पस तो बहुत कुछ है, लेकिन इसका आध्यात्म उद्देश्य क्या है, इन उपनिषदों के द्वारा स्थापित किया जाता है। और साथ में परम सत्य का जो साकार रूप है, उनका जो साकार अस्तित्व है, पर्सनल एस्पेक्ट है जो एब्सोल्यूट ट्रूथ का, उसको स्थापित किया जाता है साकार रूप। तो उसको इस तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे कि संहिता के बारे में तो हमने बता ही दिया आपको, इस संहिता नाना प्रकार के जो रत्न पाए जाते हैं वेदों में। और जब संहिता का मतलब ही होता है कि मिला देना, ज्वाइन कर देना, कलेक्ट कर लेना, है ना। और चार वेद, तो इसमें से जब ब्रह्मा जी ने जो उच्चारण किया तो इन्हीं चारों वेद के जो रत्न थे उसी का ही उच्चारण उन्होंने किया, उसको संहिता कहते हैं। इस प्रकार कई प्रकार की संहिता है, जिसमें ब्रह्म संहिता सबसे प्राचीन माना गया है, सबसे एंशियंट ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर है। ब्रह्मा जी ने इसको बोला कब? सृष्टि के प्रारंभ में बोला, सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि के निर्माण करने से पहले, उसकी रचना करने से पहले ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी भगवान की। तो ये भी उपलब्ध है। अच्छा, न्याय दर्शन अभी क्या है? न्याय दर्शन तो ठीक है, उसके बाद में षड दर्शन। अच्छा, षड दर्शन क्या है? बेसिकली एथियज्म को प्रोपोगेट करते हैं, एथियज्म को कई प्रकार के, इसमें ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने 6 फिलोसफीज प्रेजेंट किया। इसमें से पहला जो है कर्म मीमांसा दर्शन है, जो कि भगवान कृष्ण नंद महाराज को सुना रहे हैं गोवर्धन पूजा के समय। कर्म मीमांसा सिद्धांत स्वयं भगवान कृष्ण ने सुनाया नंद महाराज को। क्या बोला उन्होंने? कर्म ही पूजा है, अच्छे कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। इंद्र को इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता है? बरसात तो वहां पर भी हो रही है जहां पर इंद्र की पूजा नहीं हो रही है। पहाड़ों में समुद्र में कोई पूजा करता है क्या? समुद्र में कोई पूजा करता है? कोई नहीं करता, बारिश वहां पे भी होती है। तो आप लोग क्या ये शास्त्र के आधार पर कर रहे हो या कोई प्रथा है? तो स्वयं भगवान कृष्ण नास्तिक सिद्धांत दर्शन प्रस्तुत कर रहे थे नंद महाराज को, क्या करने के लिए? इंद्र की पूजा बंद कराने के लिए। इंद्र की पूजा बंद कराने के लिए स्वयं उन्होंने कर्म मानसा दर्शन प्रस्तुत किया। तो इसके जो क्या कहते हैं, इसको जो इसको प्रारंभ किया या इस दर्शन को जिन्होंने स्थापित किया वो थे जैमिनी ऋषि, पूर्व मीमांसा सूत्र। यानी कहने का मतलब है भगवान की पूजा अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अभी खैर हम लोग यहाँ छठ दर्शन तो आपको समझाने नहीं वाले, बहुत सारे डिटेल्स हैं उसमें, और इसकी आवश्यकता भी नहीं है वास्तव में, क्योंकि ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है, ये केवल हमारी सूचना के लिए आपको बता रहे हैं सिर्फ। दूसरा है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का मतलब बाद में जिसका इन्वेस्टिगेशन, मीमांसा का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना। उत्तर मतलब क्या है? बाद में जिसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। और इसके स्वयं रचयिता है व्यासदेव जी। तो व्यासदेव जी की रचना जो है ये नास्तिक दर्शन नहीं, इनको छोड़ के बाकी सबका नासिक दर्शन, क्योंकि इसमें वेदांत सूत्र आ जाता है, वेदांत सूत्र। तो वेदांत सूत्र जैसे हमने पहले भी बताया था, वेदांत सूत्र कोड वर्ड्स में है और न्याय के द्वारा स्थापित किया जाता है। बहुत सारी बातें सूत्र के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, लेकिन इसमें खतरा क्या है कि लोग अपने अपने अर्थ भी निकालने लगते हैं। इसलिए श्रील व्यासदेव ने सोचा कि मुझे इसके लिए एक नेचुरल कमेंट्री लिखनी चाहिए इसके ऊपर, इसको समझाने के लिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम नेचुरल कमेंट्री है वेदांत सूत्र के ऊपर। जन्मादि यस्य यतः अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सब वेदांत सूत्र के वाक्य है। 500 से ज्यादा सूत्र है, बलदेव विद्याभूषण ने इनके ऊपर टीका भी लिखी है, जिसको गोविंद भाष्य कहते हैं। हमारे संप्रदाय को प्रमाणिक स्थापित करने के लिए बलदेव विद्याभूषण ने वेदांत सूत्र के ऊपर समीक्षा दी, टीका लिखी। विश्वनाथ जी ठाकुर वृंदावन में थे, उनको चुनौती हुई कि आपका जो ये गौड़िया संप्रदाय प्रमाणिक नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आपके परंपरा में वेदांत सूत्र के ऊपर कोई भाष्य नहीं है। तो उस समय एक प्रथा थी कि अगर अपने संप्रदाय को प्रमाणिक साबित करना है तो आपके पास भाष्य होना चाहिए वेदांत सूत्र को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबका अपना अपना भाष्य था, श्री संप्रदाय का श्री भाष्य है ना, सबका अपना अपना भाष्य था। मध्वा संप्रदाय का भाष्य, मध्वा गौड़े संप्रदाय का भाष्य प्रस्तुत करना था। शंकराचार्य ने भी अपना भाष्य प्रस्तुत किया हुआ है, लेकिन वो मायावाद दर्शन है, शारीरिक भाष्य बहुत खतरनाक है। तो वेदांत सूत्र में अगर कोई शारीरिक भाष्य पढ़ लेगा तो निश्चित रूप से मायावादी बन जाएगा, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसलिए बलदेव विद्याभूषण ने ये गोविंद भाष्य प्रस्तुत किया, भगवान गोविंद देव, गोविंद देव जी की कृपा से, राधा गोविंद देव जी की कृपा से एक महीने के अंदर उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य प्रस्तुत कर दिया। गोविंद जी ने दर्शन में आकर वो कहा कि आप चिंता मत करो, मैं लिखवाता हूं, तुम आप लिखते जाओ। इसलिए बलदेव विद्याभूषण ने उस भाष्य का नाम लिखा गोविंद भाष्य, गोविंद भाष्य। तो ये इसलिए ये जो व्यासदेव जी का जो वेदांत सूत्र है ये नास्तिक दर्शन नहीं है। जन्मादि यस्य यतः है ना, भागवत इसी से शुरुआत होती है भागवत की। आध्यात्मिक और भौतिक जगत के दोनों के स्रोत परम भगवान कृष्ण है, इसका अर्थ ये। तो इसकी व्याख्या की आवश्यकता है। तो श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत इसी सूत्र की व्याख्या है 18,000 श्लोकों में। इसी बात को साबित करने के लिए श्रील व्यासदेव जी ने 18,000 श्लोकों की रचना की है, पहले इस सूत्र की व्याख्या की है। जन्मादि यस्य यतः को समझाने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना कर दी। भले वो ब्रह्मांड के बारे में चर्चा कर रहे हो, जैसे द्वितीय या तृतीय स्कंद में है सेकेंडरी क्रिएशन, प्राइमरी क्रिएशन जिसको कहते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन के बारे में जो व्याख्या है वैदिक कॉस्मोलॉजी हो, श्रीमद् भागवतम में, ये कोई भी विषय है। अच्छा ये बताना भूल गया, उपनिषदों में पांच मेन सब्जेक्ट होते हैं, भगवद गीता में पांच मेन विषय होते हैं, है भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। कर्म इनका आपस में संबंध क्या है, इनका आपस में संबंध क्या है, और जीव भगवान से संबंध कैसे स्थापित कर सकता है सेवा के द्वारा, और उसका उद्देश्य कैसे प्राप्त करें, उसका उद्देश्य क्या है, भगवत प्रेम। यानी कि भले ही आध्यात्मिक हो या भौतिक ज्ञान हो, ये इन पांच विषयों से पता चल जाता है। जो इन पांच विषयों को समझ लेगा, पांच विषयों के बारे में जानकारी रखता है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान भी हो जाएगा और भौतिक ज्ञान भी हो जाएगा। असमान इस बात, भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, और साथ में पुराण, पुराण में 10 सब्जेक्ट्स 10 सब्जेक्ट्स। क्या क्या सब्जेक्ट्स बता सकते हैं कोई? सर्ग विसर्ग, प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन। प्राइमरी क्रिएशन का मतलब क्या है? प्राइमरी क्रिएशन क्या है? प्राइमरी क्रिएशन क्या है? प्राइमरी क्रिएशन महातत्व है, 24 जो तत्व है वो प्राइमरी क्रिएशन भगवान के द्वारा दिए गए। और सेकेंडरी क्रिएशन क्या है? इसको जो लेके बनाया जाता है। सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, पोषण क्या है? मेंटेनेंस, भक्तों का, भक्तों की रक्षा। स्थान का मतलब मेंटेनेंस, इस भौतिक जगत का मेंटेनेंस, और पोषण का मतलब है भक्तों की रक्षा। भागवत में मिलेगा आपको ये सब, भक्तों की रक्षा भगवान कर रहे हैं तो उसको पोषण कहते हैं। उति, उति का मतलब डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, जीव की इच्छाएं। और क्या है? निरोध, यानी कि इस ब्रह्मांड का संहार, डिसोल्यूशन, प्रलय, एनिहिलेशन, ये भी एक विषय है भागवत का। और आश्रय, इन सब के आश्रय कौन है? भगवान कृष्ण है। इन सब के आश्रय कौन है? भगवान कृष्ण है। यानी कि जो 9 सब्जेक्ट्स हैं वो आश्रय के ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं ये सारे विषय। अन्य विषय आश्रय के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, यानी कि भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। तो जो जन्मादि से यता है ये स्थापित करने के लिए है कि भले ही आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, उसके सर्व कारण कारण कौन है? परम भगवान कृष्ण है। ओम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। और भगवान क्या करे? जो ये जान गया वो बुद्धि से, बुद्धा भावा समन्विता, बुद्धि से वो पूजा कर रहा, भक्ति कर रहा है, ये जानकर कि भगवान कृष्ण या आध्यात्मिक और भौतिक जगत के स्रोत। तो ये 10 सब्जेक्ट्स बताए गए हैं इस प्रकार। पुराण में होते हैं 10 सब्जेक्ट्स जनरली, और उपनिषद में 5 सब्जेक्ट्स हैं। 5 सब्जेक्ट जो है उपनिषद में है, 10 सब्जेक्ट जो है पुराण में। अत्र सर्ग विसर्ग स्थ स्थान पोषण उपि मनमंत्र ईशानु कथा। मनमंत्र मतलब 14 मनु। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं, 14 मनु होते हैं। और इस तरह से ब्रह्मा जी का एक दिन है केवल ये, और अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर जिसको कहते हैं, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो ये जो 14 मनु है, एक मनु का समय कितना है? 72 साइकिल्स। ये 4 युग जो 72 साइकिल्स है वो जब कंप्लीट हो जाता है तब तक एक मनु राज्य करते हैं। और वैवस्वत मनु में भी ऐसे ही होगा, उनके साथ भी ऐसे ही होना है। तो उनका 28 साइकिल बीत गया है, 28 साइकिल्स बीत गए उनके। तो 28 साइकिल में जब द्वापर युग आता है, उस द्वापर युग में परम भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। वैवस्वत मन्वंतर में 28वें साइकिल में उसमें जो द्वापर युग आता है तो उस द्वापर युग में परम भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। तो अलग अलग मनमंत्रों में भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, मनमंत्र अवतार भी कहा जाता है। इसलिए तो इन सब की भी चर्चा भागवत में की गई। ईशानु कथा, ईशानु कथा का मतलब है भगवत चर्चा, भगवान के बारे में चर्चा, उनके अवतारों के बारे में चर्चा। 24 अवतारों का वर्णन किया श्रील व्यासदेव जी ने, 24 या 22, भागवत के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में। लेकिन क्या बोल रहे हैं, एते चांश कला पुंछाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणयंति योगी योगी। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, नारायण तो भगवान स्वयं नहीं बोला, लेकिन इससे पहले उन्होंने कृष्ण बलराम को भी अवतार बताया, बलराम जी को अवतार बताया, कृष्ण को बताया कि कृष्ण बलराम भी इस तरह से अवतरित हुए। तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि उनको अवतार की बता दिया। अवतार का मतलब होता है वही कृष्ण बलराम, वही कृष्ण बलराम, यानी कि वही कृष्ण जो स्वयं भगवान है वो अवतरित हो रहे हैं धाम से। तो इसमें क्या है दिक्कत, सब कोई दिक्कत नहीं, वही परम भगवान कृष्ण अवतरित हो रहे हैं। तो इसलिए पहले वो चतुर्भुज रूप ने दिखाया देवकी को, वासुदेव, और फिर स्वयं कृष्ण प्रकट हो गए, तो वही अवतरित हुए ना। तो इस प्रकार ये पुराणों में 10 विषय दिए जाते हैं और 9 विषय दिए जाते हैं, 5 विषय होते हैं उपनिषद में। उपनिषद में उती भी बताया था हमने, इच्छाएं एक रह गया, ईशानु कथा, ईशानु कथा कोई रह गया,
एक रह गया।
वो कौन सा एक,
ईशानु कथा के बारे में बताया,
ईशानु कथा बताया ना, नहीं फर्स्ट ये बताया था, अत्र सर्ग विसर्ग छ, अत्र अत्र नहीं, अत्र का मतलब है यहाँ पर, आत्र का मतलब यहाँ, हाँ सब्जेक्ट है ये, 12th कैंटो में मिल जाएगा आपको। वैसे 10 सब्जेक्ट जो बेसिकली पुराणों में दिए जाते हैं और श्रीमद् भागवत में 10 सब्जेक्ट दिए गए, 3rd कैंटो में भी है, पहले भी है। तो ये बेसिकली जो है इसमें आप देख लीजिएगा, वैसे उसमें भागवत मिल जाएगा आपको, 12th कैंटो मिल जाएगा, 12th कैंटो में या 3rd कैंटो में मिल जाएगा आपको, या ध्यान बीच में आएगा तो आपको बता देंगे। कहीं रहते हैं आप, मुझे क्या पता कहाँ रहते हैं, होगा कहीं स्थान, जैसे वैवस्वत बोलो, विवस्वान, सूर्यलोक में रहते, सूर्यलोक में रहते हैं, हाँ सूर्यलोक में रहते हैं। इमं विवश्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, भगवान गीता में कह रहे हैं कि नहीं, मैंने दिव्य ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवश्वान को दिया, वही तो है विवश्वत मनु, सूर्यलोक, सूर्यलोक के जो राजा है उनका नाम है विवश्वान। सूर्यदेव तो टाइटल है, नाम नहीं है, ब्रह्मा टाइटल है, अग्निदेव टाइटल है, उनके नाम अलग होते हैं, ये सब पोस्ट है, यानी कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, ये भी टाइटल है। उसके बाद आगे चले योग, सांख्य योग, क्षमा करिए, सांख्य योग, सांख्य योग का वास्तव में दर्शन प्रस्तुत किया भगवान कपिल देव ने, जो कि माता देवोक्ति के पुत्र बताए गए हैं। तो ये भी नास्तिक दर्शन नहीं है, एक एथिस्ट कपिल भी हुए थे जो नास्तिक दर्शन प्रस्तुत किया, लेकिन जो भगवान कपिल देव ने प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने भक्ति की भी चर्चा की और उन्होंने कारण भी बताया कि जो 24 तत्वों के भी कारण जो है वो है ब्रह्म भगवान है। तो भगवान कपिल देव की शिक्षाएं आपको मिल जाएंगी भागवत में, भागवत के तृतीय स्कंद में अभी शुरू होने वाला है, प्रातः काल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें भगवान कपिल देव की शिक्षाएं आएंगी, बहुत सुंदर शिक्षाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए भगवान कपिल देव। योग, योग का मतलब होता है कि अपने आप को लिंक करना, भगवान के साथ जोड़ना, और इसमें पतंजलि ऋषि हुए जिन्होंने दर्शन प्रस्तुत किया, और परमात्मा के ऊपर विशेष रूप से ध्यान लगा जाता है। लेकिन पतंजलि ऋषि ने यहाँ पर इस ग्रंथ में भगवान के बारे में कोई विशेष रूप से चर्चा नहीं की, परमात्मा परमात्मा ही कहा जाना उन्होंने, और इसमें 8 उन्होंने प्रोसेस बताए, 8 स्टेप्स बताए हैं जिसके द्वारा आप समाधि तक पहुंच सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, तो ये अष्टांग योग में आता है। वैशेषिक दर्शन है, इसके ऋषि हुए कर्नाड ऋषि जिन्होंने वैशेषिक सूत्र प्रस्तुत किया। वैशेषिक ऋषि का जो दर्शन है बिल्कुल आजकल के वैज्ञानिकों से मिलता जुलता है। आजकल के वैज्ञानिक शायद इन्हीं के ही वंश परंपरा है। तो इनका भी ये कहना था कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो वास्तव में एटम के स्टॉक से निकला है, उसका ओरिजिनल स्टॉक उसका क्या है, एटम से भरा हुआ है, तो वही सोर्स है। द यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल स्टॉक ऑफ एटम्स, वैशेषिक दर्शन ही है। तो बेसिकली ये सारे नास्तिक दर्शन है। न्याय, गौतम ऋषि, न्याय शास्त्र, दार्शनिक जिज्ञासा, रीजनिंग, ये सब जो है न्याय शास्त्र में गौतम ऋषि ने प्रस्तुत किया। अच्छा, अब क्या है नेक्स्ट है, और भी स्मृति शास्त्र है, इसमें आता है आगमा। आगमा इसका नाम है आगमा। आगमा का मतलब है कि इन शास्त्रों में लिखा जाता है कि इस विग्रह की पूजा कैसे की जाए, मंत्र का उच्चारण कैसे की जाए, तंत्र का उच्चारण कैसे किया जाए, उत्सव कैसे मनाया जाए, घर में मंदिर का निर्माण कैसे किया जाए, घर का निर्माण कैसे किया जाए, और अर्चे विग्रह कैसे बनाए जाए, इसके बारे में चर्चा की गई है। और इन आगम के भी तीन विभाग हैं। एक वैष्णव आगम होता है, एक शैवत लोगों का आगम होता है, और एक जो देवी के उपासक है शक्ता जिनको कहते हैं उनका आगम होता है। और वैष्णव आगम जो है चार विभागों में बांटे जाते हैं। पहला है विज्ञानला तिस, और पंचरात्र, वैख्यानस और प्रतिष्ठासस। तो पंचरात्र जो है वैष्णव के द्वारा सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है, और पंचरात्र भी 7 भागों में बांटा गया है। इसे पंचरात्र भगवान नारायण के द्वारा बोला जाता है जो कि शिवजी और पार्वती के बीच में संवाद है, और 5 प्रकार के जो हमने बताए थे विषय की चर्चा की जाती है, पुंड्र, ताप, है ना, बताया था ना आपको हमने, नाम, यज्ञ, जब दीक्षा लेते हैं तो पंच संस्कार जो होते हैं तो वो पंचरात्र विधि में आ जाते हैं, पंचरात्र में इन्हीं की चर्चा होती है। और इसमें आते हैं नारदीय पंचरात्र है, गौतमी पंचरात्र है, और ब्रह्म पंचरात्र है, क्षमा करिए, इसमें वैष्णव में 7 प्रकार के हैं। हाँ ठीक है, नारदी है, गौतम पंचरात्र है, ब्रह्म पंचरात्र है, शैव पंचरात्र है, कुमार पंचरात्र है, वशिष्ठ पंचरात्र है, कपिल पंचरात्र है। हम विशेष रूप से ज्यादा नारद पंचरात्र से लेते हैं। हमारे जो अर्चन वगैरह की जो सेवा पूजा है यहाँ पर मंदिर में जो हो रही है ये नारद पंचरात्र के ऊपर आधारित है। हरि भक्ति लास में भी जो लिया गया है वो नारद पंचरात्र के ऊपर आधारित है, जिसको पंचरात्र की विधि कहते हैं। यानी कि पंचरात्र की विधि का मतलब क्या है कि पंचरात्र की विधि ये है कि शूद्र भी जो है इसको पढ़ सकता है, इसका उपयोग कर सकता है, और अपने आप को ब्राह्मण के सर पर ला सकता है। यानी कि जन्म योग्यता नहीं है इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए। ये नहीं कि अगर आप ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तभी आप ही पढ़ सकते हैं, कोई अगर शूद्र परिवार में भी अगर जन्म लिया है तो वो भी पंचरात्र की विधि के माध्यम से अपने आप को पवित्र कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, और ब्राह्मण के सर पर अपने आप को ला सकता है। इसी कारण से प्रभुपाद जी ने इसको स्थापित किया, पंचरात्र विधि को और साथ में भागवत विधि को। या कोई भी हो, चंडाल भी हो, यावण भी हो, मलेच्छ भी हो, पंचरात्र विधि के माध्यम से वो भी ब्राह्मण के स्तर पर आ सकते हैं, ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म को अटेन कर सकते हैं। तो चैतन्य महापुरुष इसलिए सनातन गोस्वामी को यही करने के लिए कहा, और शिल रूप गोस्वामी ने भी भक्ति रसाम सिंधु में नारद पंचरात्र से कई श्लोक उदित किए हैं। श्रुति स्मृति प्राण आदि पंचरात्र के विधि मना एकांत गिर हरेर भक्ति उत्पात आए व कल्पते। उत्पात मचाता है समाज में, कौन मचाता है, वो लोग मचाते हैं जो श्रुति स्मृति और पुराण और पंचरात्र विधि के अनुसार जो है भक्ति नहीं करते, जो सीधे ही भागवत मार्ग में जाना चाहते हैं बिना प्यूरिफिकेशन के। तो प्यूरिफिकेशन के लिए दोनों को साथ में लेकर चलना होता है। भागवत मार्ग हमारा गोल है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म में पहुंचने के लिए पंचरात्र विधि का सहारा लेना होता है। इसलिए मंत्र दीक्षा पंचरात्र विधि में आती है, उसमें ही डिटी वर्शिप भी आता है। जिससे हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, हमारे कॉन्शियसनेस का प्यूरिफिकेशन होता है, और भागवत मार्ग के सहारे से हम लोग और ज्यादा ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट्स में और डीप जा पाते हैं, स्टैंडर्ड ट्रांसेंडेंटल साइंस को, भगवत विज्ञान को और गहराई से हम लोग समझ पाते हैं भागवत मार्ग के आधार पे। और 28 प्रकार के शैवत आगम हैं और 27 प्रकार के शक्त आगम हैं। यानी आगम का मतलब ये बताया, जैसे कि हमने बताया कि एक पर्टिकुलर देवता की पूजा कैसे करनी है, इन आगम में बताया जाता है, और अपनी इच्छा को कैसे पूरा किया जा सके। तो 5 प्रकार के कौन कौन से इसमें है, एक है शक्ति है जिसको शक्त आगम कहते हैं, दूसरा सूर्य है जिसको सौर आगम कहते हैं, फिर एक गणेश जी है जो कि विघ्न दूर करने वाले हैं, गणपति आगम कहते हैं, और एक शैव्य आगम है जो शिव जी के उपासक हैं और विष्णु के हैं, वैखानस आगम जिसको कहते हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग भी करते हैं मायावादी लोग। मायावादी लोगों का कहना है कि पंच उपासना करके हम लोग क्या होगा, भ्रम के साथ तदात्म्य हो जाएंगे, विष्णु की पूजा करके विष्णु बन जाएंगे, फिर विष्णु का हटा लेंगे क्योंकि हम स्वयं नारायण बन गए, तो होता ही है। और दूसरे एक दूसरे को देखकर जब सन्यास ले लेते हैं, सन्यास लेने का मतलब उनमें यही है कि सन्यास लेने का मतलब यह है कि अब हम नारायण बन गए, नमो नारायण बोलते हैं एक दूसरे को, आप नारायण हैं, आपको नमस्कार हो। उससे पहले वो अर्चे वगैरह की पूजा करते हैं, मंदिर भी बनाते हैं। इसे बड़ा कई आश्चर्य होता है कई बार देखे इन सन्यासियों को, मायावादियों को, कि ये भी मंदिर बना रहे हैं, डीटी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, सब कुछ हमारे जैसे लगता है देखने में। तो भक्ति ठाकुर ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया, जो धर्म में प्रश्न है कि विष्णु की जो पूजा करने वाले हैं, जो इस धारणा से करते हैं, क्या धारणा कि नारायण बन जाएंगे, क्या उनको वैष्णव कहा जाएगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, वो वैष्णव नहीं है, वो मायावादी है। इसी तरह से कोई हरिनाम लेता है इसी विचार से, किस विचार से, कि मैं नारायण बन जाऊंगा इस हरिनाम को लेकर, तो वो हरिनाम को भक्तिवन ठाकुर कहते हैं हरिनाम चिंतामणि में कि ऐसा हरिनाम संकीर्तन जो है वो नाम आभास नहीं है, नाम अपराध है। तो विष्णु की पूजा जो इस दृष्टिकोण से करता है कि स्वयं विष्णु बन जाएंगे और फिर विष्णु के विग्रह को हटा देंगे, तो वो अपराधी बन जाते हैं। फिर होता है, वैसे देखा जाए तो इन सभी को मिला के, वैदिक शास्त्रों को मिला के, वेद उपनिषद पुराण इन सब को मिलाया जाए तो इसमें 1 बिलियन से ज्यादा श्लोक है। देर आर मोर देन 1 बिलियन वर्सेस। इतना समय है हमारे पास, आपके पास भगवदगीता तो हम पढ़ने वाले हैं एक श्लोक रोज का। अगर हम अपने ग्रुप प्रोग्राम में 10 पेज देते हैं पढ़ने के लिए कि इस हफ्ते ये डिस्कशन होगा, तो 10 पेज कैसे पढ़ सकते हैं, ये संभव ही नहीं। हमारे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और एक क्या 1 बिलियन वर्सेस पढ़ने के लिए कहा जाए, तो एक जीवन पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए देखा जाए तो प्रभुपाद ने हमें बहुत सरल तरीके से छोटी छोटी किताबें दे दी हैं। अगर मान लीजिए कोई भागवत पूरा नहीं भी पढ़ पाया तो कम से कम उसका सार तो मिल जाएगा इन छोटी किताबों में, और उसी से व्यक्ति जो है, भक्त जो है, आगे निकल जाएगा। धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र में मूलतः आते हैं जैसे मनु संहिता, इसको धर्मशास्त्र कहते। धर्मशास्त्र का मतलब है आपने पाप किया, आपको प्रायश्चित करना है, तो इस पाप के लिए प्रायश्चित किया है। जैसे मान लीजिए आपके कमरे में कबूतर मर गया, उसके लिए आपको बताया जाएगा प्रायश्चित करना है कि आप सोने का कबूतर बनाओ। होता है कि नहीं होता है ऐसे? या सोने की अंगूठी दो या कुछ भी है, फिर ब्राह्मणों को कुछ देना पड़ता है, फिर बहुत बहुत सारी बातें होती है। यही बताया परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कि आपको प्रायश्चित कर लीजिए, पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य फल मिलता है, पाप कर्म करते हैं तो फिर पाप कर्म का फल मिलता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अगर कोई पाप करता है तो उस पाप कार्यों से कैसे बचा जाए, तो प्रायश्चित कर लो बोलते हैं। उन्होंने कहा आप भी क्या बात करते हैं, प्रायश्चित कर ले, ये तो हाथी स्नान की तरह हो गया, मैं स्नान किया फिर मैंने मिट्टी डाल ली, तो प्रायश्चित तो बिल्कुल वैसे ही हो गया, क्योंकि पाप का जो बीज है वो वैसे के वैसे ही रह गया, पाप का बीज तो नहीं आप उखाड़ पाए, पाप का बीज कैसे समाप्त किया जा सके। तो पाप का बीज समाप्त करने की बात जब की तो सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल की कथा सुनाई, केवल हरिनाम के माध्यम से ये संभव है। ये धर्मशास्त्र इसके लिए पर्याप्त नहीं है, इससे भागवत धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। तो मनु सभ्यता में विशेष रूप से ये बातें दी गई हैं, इसको धर्मशास्त्र कहते हैं। श्रुति के ऊपर जो समीक्षा दी जाती है, स्मृति का जो विचार होता है श्रुति के ऊपर, और विशेष रूप से ये ब्राह्मणों के लिए होता है, इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं, और इसमें विशेष रूप से मनु संहिता जो है बहुत प्रचलित है। कहने का अर्थ है जो इसने श्रीमद् भागवत का सहारा नहीं लिया है, जिसने भागवत का सहारा नहीं लिया है, यानी कि वैष्णव संप्रदाय में जिसने आश्रय नहीं लिया है, तो उसको मनु संहिता का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, अगर नरक से जाने से बचना है तो, नहीं तो नरक जाना निश्चित है। तो इसलिए धर्मशास्त्र बनाया गया है। अर्थशास्त्र बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होता है। एक क्षत्रिय के लिए क्या क्या आवश्यकता है, उसको किस प्रकार के अस्त्र रखने चाहिए, किस प्रकार का उसको शस्त्र रखना चाहिए, हाँ, उसको कैसे उसको क्या अक्षौणी सेना अगर बनाए तो कैसे बनानी है, सारा डिटेल्स अर्थशास्त्र में। वेपन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है उसमें, नाना प्रकार के आपने देखे ना धनुर्विद्या, इस अर्थशास्त्र में पाए जाते हैं। द्रोणाचार्य ने जो सिखाया वो उनको अर्थशास्त्र सिखाया, चलाओ देखो सामने क्या है, तुम्हें क्या नजर आ रहा है। युधिष्ठिर महाराज से पूछा, तो मुझे पेड़ भी नजर आ रहा है, पत्ते भी नजर आ रहे हैं, पक्षी भी नजर आ रहे हैं। अर्जुन कहता मुझे तो केवल आंख नजर आ रही है बस के। तो ये अर्थशास्त्र है जो धनुर्विद्या सिखाई जाती है, और कई प्रकार के मंत्र सिखाए जाते हैं, मंत्र उच्चारण से बाण छोड़े जाते हैं, और कई ऐसे अस्त्र छोड़े जाते हैं जिनको स्थूल रूप में साथ में ले जाते हैं। जैसे कौन सा अस्त्र है, वो न्यूक्लियर वेपन है जो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं है कोई यहां पे पीछे रख के ले जाता है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मास्त्र मंत्र उच्चारण से प्रकट होता है ये सब, लेकिन बड़े सटल साइंस है ये सारा। आजकल के वैज्ञानिक ये सब नहीं जानते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ते रहेंगे, पैसा खर्चा करते रहेंगे लोग, खुद को भी तबाह करते हैं। और ब्रह्मास्त्र की विशेषता यह है कि जिसमें आपके ऊपर आपने लक्ष्य बनाया, जिसके ऊपर आपने आक्रमण करना है, उसी पे ही वो आक्रमण होगा। अगर आपके पास आना तो आपके पीछे भागेगा वो। पशुपाश अस्त्र नहीं, वो पशुपाश अस्त्र शिव जी का नहीं, वो नहीं, नागपाश भी ऐसे ही। अर्जुन के पास बहुत सारे अस्त्र थे, अर्जुन गए थे स्वर्ग लोग तो उनको बहुत सारे अस्त्र मिले वहां से, तो शिवजी से मिला था उनको पशुपास्त्र। और अर्जुन ने भी नागपाश अस्त्र छोड़ा था, आप जानते हैं किसके लिए छोड़ा था, एक चक्र धाम में जब गए थे पांडव लोग, जब ठहरने के लिए गए थे, उनको पता चला कि भीम गए बानासुर को मारने के लिए, कुंती महारानी बताया, तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है आप रुकिए कि मैं अपने भाई को देखने जाता हूं। उन्होंने कहा जब तक पहुंचूंगा तब तक तो खत्म हो जाएगा या कुछ हो सकता है, तो अभी से बाण छोड़ देता हूं, और नागपाश अस्त्र छोड़ दिया। वो नागपाश अस्त्र जा रहा है, बाणासुर तो मारा गया, भीम ने आके बताया, भीम को जब देखा अरे तुम तो आ गए, तो भीम ने कहा हाँ मैं तो मार दिया उसको बाणासुर को, उसका अरे नागपाश अस्त्र मैंने छोड़ दिया, वो तो अपने लक्ष्य को ढूंढ रहा होगा, और तुम तो यहां पर आ गए हो, बाणासुर भी मारा गया तो मुझे जाने दो रहा उसको शांत करने के लिए। तो जिस व्यक्ति ने अस्त्र छोड़ा है वही कुछ कर सकता है फिर। तो फिर अर्जुन ने उस नाग को जो है उस पेड़ के अंदर छुपाया। खैर वो आगे की कथा है वो, लेकिन यहां पर हम बताना चाह रहे हैं कि ये सब अर्थशास्त्र में बताया जाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। महाभारत और रामायण ये स्मृति शास्त्र है, इतिहास भी होते हैं। पुराण का मतलब क्या है, पुराण का मतलब है बहुत ही एंशियंट है, प्राचीन है, लेकिन आज भी उतना ही नया लगता है। ध्रुव महाराज की कथा कब सुनाई गई थी, कब हुआ था ये प्रसंग ध्रुव महाराज का, स्वयंभू वनवंतर में, ये सातवां वनवंतर चल रहा है, कितने साल हो गए। प्रहलाद महाराज की कथा कौन से वनवंतर की है, चाक्षुष वनवंतर की है, 30 करोड़ साल पहले। आज भी हम लोग नरसिंह भगवान के ऊपर ड्रामा करते हैं, नहीं नया लगता कि नहीं लगता। तो पुराणिक पुराण का मतलब तो होता है एक तरह से पुराना, लेकिन पुराना का पूरा पूरा और नव, इसका संधि विच्छेद इस तरह से होता है, पूरा यानी कि पुराना और नव का मतलब नया, पुरानी बातें भी नहीं लगती हैं इन पुराणों में, तो उसको पुराण कहा जाता है। अच्छा जी, आपके 10 टॉपिक्स तो मिल गए यहां पर, सुन लीजिए। सर्ग स्याद विसर्गश्च वृति रक्नांतराणी च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुर अपाश्रयः। तो पहले बताया सर्ग सृष्टि 24 तत्वों की सृष्टि, महत्तत्व जिसको कहते हैं, भगवान के चरणों में ये महत्तत्व है, आप जानते हैं ना, ये बात नहीं बताओ को। महत पदम यशो मुरारे, भागवत में ये लिखा है, महत पदम यशो मुरारे, ब्रह्मा जी बोल रहे समाश्रित ये पद पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। तो महत पदम का मतलब यही है कि जिसके चरणों में महत्तत्व है, भगवान के चरणों में महत्तत्व मतलब होता है 24 तत्व, 24 इंग्रेडिएंट्स। जब महत्तत्व को उसको एक्टिवेट किया जाता है भगवान के द्वारा दृष्टिपात करके, स एक्षिता स अस्त्र जाता बोलते हैं ना, जैसे उपनिषदों में दिया है कि जैसे भगवान दृष्टि डालते हैं तो जो प्रधान है जो कि इनएक्टिव स्टेट में है वो एक्टिव हो जाता है। तो महत्तत्व बेसिकली एक्टिव स्टेट है, और इनएक्टिव स्टेट क्या है, प्रधान। प्रधान का मतलब जो 24 तत्व जो एक्टिव नहीं होते हैं, सक्रिय नहीं होते हैं, उसको प्रधान कहा जाता है। लेकिन जब एक्टिव हो जाता है, जैसे मान लीजिए एक रेडियो है आपके पास, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन करंट नहीं है, या आपका सीडी प्लेयर है, या आपके पास जूक बॉक्स है, या आईपॉड है लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हुई, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बोलते हैं 120 GB है, 80 GB है, लेकिन सुनाई कुछ नहीं दे रहा है, तो फायदा उसका कुछ, तो उसको प्रधान कहते हैं। और उस प्रधान को अगर महत्तत्व बनाना है तो कहने का मतलब यह है कि उसको उसके अंदर करण दौड़ाना पड़ेगा, तब वो महत्तत्व का कार्य करता है। तो 24 इंग्रेडिएंट्स हैं, फिर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर उसके अपने अपने फंक्शन है। ऐसे एक गाड़ी में पार्ट्स होते हैं, अलग अलग ऑटो पार्ट्स होते हैं, BMW है, मर्सिडीज बेंज है आपके पास, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी जब तक उसमें ड्राइवर नहीं होगा, और जैसे ही ड्राइवर आएगा तो उसके जो अपने अपने पार्ट्स हैं, कि पार्ट्स हैं उसका अपना अपना फंक्शन है, फिर ऐसा नहीं कि वो फंक्शन नहीं है, उसका भी अपना अपना फंक्शन होगा। फिर इसी तरह से इन 24 तत्वों का अपना अपना फंक्शन है इस क्रिएशन में, इस सृष्टि में। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, और उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बींग्स और देयर सस्टेनेंस पोषण, जिसको हमने बोला रूल ऑफ वेरियस मनुष्य डायनेस्टीज ऑफ ग्रेट किंग्स, इसमें दूसरी तरीके से दिया हुआ है, एक्टिविटीज ऑफ सच किंग्स, एनाइलिएशन मोटिवेशन एंड सुप्रीम शेल्टर। तो बेसिकली 10 सब्जेक्ट्स हैं पुराण के, और जो लेसर पुराणास होते हैं जिसको उप पुराण कहते हैं, वो उसमें 5 विषय होते हैं। 18 पुराण को 3 भागों में बांटा जाता है, विष्णु के ऊपर आधारित है, जो भगवान विष्णु के ऊपर आधारित है वो 6 पुराण है, इस तरह से ब्रह्मा जी के ऊपर जो पुराण है वो 6 पुराण है, शिव जी के ऊपर आधारित जो पुराण है वो 6 भी पुराण, 6 पुराण है, यानी सत्व गुण में जो स्थित है उनके लिए 6 पुराण है, रजोगुण में जो स्थित है उनके लिए 6 पुराण है, और जो तमोगुण में स्थित है उनके लिए भी 6 पुराण है। उससे सब में पुराणों में भागवत पुराण सबसे टॉप में है। तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब इन सब पुराणों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पढ़ने से कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। व्यास जी को इसलिए नारद जी ने कहा कि आप सब लिख चुके हैं, महाभारत लिख चुके हैं, आप दुखी क्यों लग रहे हैं, इतने सारे शास्त्र आपने लिखे क्या बात है, मुझे लगता है कि आपने शुद्ध भक्ति की चर्चा नहीं की है विस्तार से, सारा कहीं ना कहीं आपने मिक्सर कर दिया, श्रीमद भागवत की आवरचना करी। तो विष्णु बेस पुराण क्या क्या, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वराह पुराण, 6 पुराण, और रजोगुण में जो स्थित है उनके लिए 6 पुराण है, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण और वामन पुराण, और जो तमोगुण में स्थित है उनके लिए भी छह पुराण है, वायु पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण। अग्नि पुराण में नरक लोगों का वर्णन विस्तार से दिया गया और उप पुराण सनत कुमार, नरसिंहा, नारदीय, शिव, दुर्वास, कपिल, मानव, उषण, वरुण, कालिक, शंभ, शौर्य, आदित्य, महेश्वर, देवी भागवत, देवी भागवत सुना हमने आजकल बड़ा प्रचलित हो गया कई जगह पर, वासिष्ठ, विष्णु, धर्मोत्तर, नीलमत और तंत्र। तंत्र क्या है? उन लोगों के लिए जो तांत्रिक बनना चाहते, तो भी एक शास्त्रों का एक भाग है, उन लोगों के लिए जो तामसिक हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, तो इसमें कई प्रकार के तंत्र दिए गए हैं और जिसमें विशेष रूप से देवियों की पूजा हो जाती है, काली पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है और तांत्रिक पूजा होती है, जादू टोना सिखाया जाता है, यंत्र मंत्र और विशेष यज्ञ सिखाए जाते हैं इस प्रकार की तामसिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो ये तो है तंत्र हुए। तो इस प्रकार ये यहां पर वर्णन हम लोगों ने दिया, क्योंकि हमें पता होना चाहिए इन शास्त्रों के बारे में, थोड़ा थोड़ा सब जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो बोलेंगे आप तो सिर्फ भगवद गीता जानते हैं, बताइए उपनिषद क्या है। प्रचारक होने के नाते बेसिक इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए हमारे पास, बाकी डिटेल तो कोई जानता भी नहीं है, हम भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानते हैं। तो इसलिए इतना जरूर जान जाए ताकि वो जान जाए कि हम लोग जान चुके हैं। वेदेश सर्वेर हम अहम वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एवच हम। इसने भगवान कृष्ण को जान लिया, यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवंती, प्रभुपाद कहते हैं जिसने कृष्ण को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। तो इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है हालांकि हमें सब जानने के लिए, फिर भी प्रचार के दृष्टिकोण से एक सामान्य ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, तो लोगों को लगेगा कि हम लोगों ने वास्तव में निष्कर्ष को पकड़ा है। निगम कल्पतरो घलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य समितम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिको भूवि भाव का। तो जो पका हुआ फल है वैदिक शास्त्रों का वो श्रीमद् भागवत है, इसमें निचोड़ है, इसमें भक्ति की चर्चा है, जीवन का लक्ष्य जो है प्राप्त हो सकता है इसी को पढ़ के। ये स्मृति शास्त्र है जैसे भगवत गीता है, भगवान का संदेश। तो इस प्रकार और इन वैदिक शास्त्रों में मूलतः तीन प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली तीन प्रिंसिपल्स हैं, संबंध, अभिदय और प्रयोजन। भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, भौतिक प्रकृति के साथ हमारा संबंध क्या है और प्रकृति का भगवान से संबंध क्या है, काल का प्रभाव प्रकृति के ऊपर कैसे पड़ता है, काल का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है और कर्म बंधन से छुटकारा पाने का तरीका क्या है, कौन से कर्म हम बांधते हैं, अच्छे कर्म से क्या होता है, अच्छे कर्मों से क्या होता है, बुरे कर्मों से क्या होता है और अकर्म क्या है, ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं कर्म बंधन से। तो इन सब शास्त्रों में इन बातों की चर्चा की गई। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? टाइम तो हो सकता है गुरु से पूछ के कर सकते हैं, अनुमति मिल जाती है इसके भी, क्योंकि कई बार होता है ऐसे, तो कई लोग ऑफिस जाते हैं, डेली जाते हैं और ऑफिस में कई बार उनका ऐसा सिचुएशन नहीं होता है कि वहाँ पे कहीं बैठ के कर सकें, हर जगह तो हर एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं होता है, तो कुछ लोग चाहेंगे सुबह बैठ के दो टाइम कर लें, दो सेट्स कर लें ताकि दोपहर का भी कवर हो जाए, तो उसके लिए गुरु से परमिशन ले सकते हैं।
आपने अभी जो इन क्लास में लेक्चर में बहुत कुछ समझाया है, बहुत पुराना है, कुछ बातें तो हमें समझ में भी नहीं है क्योंकि काफ़ी हमारे लेवल से ऊपर है, सो समझ में आज दैट व्हाट इज द यूज ऑफ नोइंग ऑल दीज थिंग्स एंड हाउ यू कैन वी अप्रिशिएट दिस थिंग टू अंडरस्टैंड प्योर डिवोशनल सर्विस एंड वेयर इज इट।
वैसे इसकी आवश्यकता नहीं, हमने पहले बताया है कि इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जानना चाहिए कि लोग जाने कि हम कुछ जानते हैं, नहीं तो लोग सोचेंगे कि भक्त लोग कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन रखना अच्छा है, लेकिन इसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। डिटेल्स में जाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी मना कर रहे हैं हमें, ज्यादा शास्त्रों में मत घुसो। इसलिए जो शास्त्रों के जो निष्कर्ष है, भागवत है, भगवद्गीता है, चैतन्य चरितामृत है, बहुत पर्याप्त है हमारे लिए। वैश्य ग्रंथ जो है वो पर्याप्त है हमारे लिए, लेकिन जहाँ तक ये सब है उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। चार वेद हो गए, अन्य उपनिषद हो गए, इसका इसकी सूचना रखे हो बस, उतना पर्याप्त है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। और कोई प्रश्न?
ये हाँ
जी, ये आएगा
आगे।
तो फिर से आपको याद दिला दें, साधना चार्ट, सीता नवमी नहीं, साधना चार्ट। साधना चार्ट आपको दिया था हमने मेरे ख्याल से एक महीने पहले। हाँ, तो कृपा करके आप उसको भर के लाइए नेक्स्ट वीक। एक हफ्ता और टाइम दे देते हैं आपको, इसमें आपका डेली शेड्यूल भी है, आप लिखिएगा, ब्रॉड आउटलाइन दीजिए उसका, और साधना चार्ट भरिए ताकि हमें पता चले कि आपका स्पिरिचुअल जो स्टैंडर्ड है डेली का वो कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं, क्या आपका वर्किंग शेड्यूल है, कितने बजे जब आपका पूरा होता है, वो सब डिटेल उसमें लिखा हुआ है, ये बहुत जरूरी है।
साधना चार्ट के बारे में एक दो चीज
पूछिए,
जैसे ये इसको ये प्राइवेट एंड पर्सनल करके दिया हुआ है,
दिखाइए। अच्छा, ये आइए, अलग अलग आपके जो समस्याएं आई हैं, जैसे मान लीजिए संडे के दिन आपने बहुत ज्यादा खा लिया, तो यहां पर ई मार करेंगे आप, और मंडे के दिन आपने प्रजल्पा किया तो यहां पी लिखेंगे। तो इस तरह सात दिन आपको जो सात प्रकार, सात अलग अलग समस्याएं आई, उसका आप डिस्क्रिप्शन जो आप दे देंगे कोड वर्ड में, तो हमें देख के समझ में आएगा कि समस्या ज्यादा है या कम है। और नीचे अच्छी बातें भी लिखी हैं, मंडे को आप बड़े एंथुसियास्टिक रहे और असत्संग का त्याग किया आपने, बड़े टॉलरेंट थे, बड़े हम्बल थे, आपने किसी को क्षमा भी किया बहुत लोगों को, तो अगर वो भी क्वालिटीज आपके अंदर है तो वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है सब कुछ, कोड वर्ड्स में लिखना आपको सिर्फ। ये बेसिकली बड़ा सहायक होता है जब हम किसी काउंसलिंग करते हैं तो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। ये किसका है? उसकी खैर आवश्यकता नहीं, वो उसमें जो अभी दिखाया था ना वो काफी उसमें आ जाएगा। और कुछ? हाँ जी, किसको दिया आपने, किसको किसको दिया? सुध गोस्वामी को दिया, तो ठीक है उनसे ले लेंगे। नहीं अभी एक महीने का देखेंगे, वो तो एक महीने का बहुत होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कल सीता नवमी है, कल सुबह अभिषेक वगैरह होगा यहाँ पे, और चंदन दर्शन भी है, कल फास्टिंग भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जिस दिन अभिषेक होता है ठाकुर जी का उस दिन खाना नहीं चाहिए, पहले अभिषेक और भोग और आरती के बाद ही हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, और उसके बाद फिर चंदन दर्शन 4:15 बजे सीता नवमी के दिन। और 7 तारीख को यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम है निरंजन प्रभु की कृपा से ऑडिटोरियम में, नरसिंह भगवान के ऊपर ड्रामा भी होगा, जितामतपुर लेक्चर दे रहे हैं। 8 तारीख को नरसिंह तत्वदर्शी है, उस दिन चंदन दर्शन भी होगा फिर से, और शाम को 5:30 बजे अभिषेक है मंदिर में। हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाल की जय, और प्रेमानंद समवेत भक्त वृंद की जय। आज मैं ऐसे बता रहा हूँ, स्मृति स्मृति प्रदान न्याय शांति क्या है, आगम क्या है, संहिता क्या है, लोगों कई लोग पता नहीं चला। 10 टॉपिक्स क्या है, उपनिषद और कुरान में क्या
क्या चाहिए, सारे वेदांश
वेदांश क्या है,
साधना चाहता है, इसके तो हर सब्जेक्ट में
सारे।
आइडिया लेने के लिए जैसे भी है लेकिन उसके कारण डिस्कस कर सकते हैं उसको कैसे किया जाए बताना वेद जो है श्रुति है स्मृति पुराण जाते हैं वेदों को वेदों की बातों को एस्टैब्लिश करने के ही लिए है पुराण बताना जैसे केसेस है आईपीसी सेक्शन कोड है और कोड है आपका वेद ठीक है उसको समझाने के लिए पुराण है वो लॉ केसेस केस स्टडी है मतलब कोई बात बताई गई है उसको प्रूव करने के लिए प्रूफ क्या है इसका उसका प्रूफ ये पुराण बोलते हैं 1962 में गुप्ता जी ने वर्मा जी के साथ झगड़ा किया था लॉ केसेस होते हैं रिकॉर्ड होते हैं इसी तरह से पुराणों में सरकार की कथाएं रिकॉर्डेड होती हैं कथाएं तो अलग अलग समय पर हुई है ना और कथाएं भी जो है कई बार रिपीट भी होती जैसे भागवत पुराण में कई पर्सनैलिटीज हैं जैसे ध्रुव महाराज है भागवत हमेशा रहा है तो ध्रुव महाराज अपनी भी कथा सुनते हैं कथा भी अपनी कथाओं सुनते हैं जब वो रहते हैं लेकिन कुछ सटल डिफरेंसेस रहते हैं नरसिंह भगवान जैसे बता रहे हैं कि 7 जगह पर प्रकट हुए एक बार स्वर्गों में प्रकट हुए एक कल्प में वो बता रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान में कोई जगह है वहाँ प्रकट हुए हैं और एक बार सिंहाचलम नहीं सॉरी अहोबलम वहाँ प्रकट हुए हैं एक बार स्वर्गों में प्रकट हुए हैं इस तरह से ये अलग अलग कल्प की कथा है तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है बट बेसिक जो है फिलोसफी सेम रहती है
वेदों को प्रूफ करने के लिए
पौराणिक कथा है क्योंकि भगवान की लीला है ना ये तो उसमें भी वैरायटी होगी थोड़ी बहुत
ब्रह्म संहिता आपने बताया स्टोरेज हाउस ऑफ ज्वेल्स
हाँ ब्रह्म संहिता बेसिकली जो चार वेद है संहिता मतलब कलेक्शन
उनमें से थोड़ा थोड़ा करके जो
कलेक्शन है कलेक्ट क्या किया है उसमें से ज्वेल्स कलेक्ट किए हैं और जब उसका उच्चारण किया जाता है तो उसमें से गा के जैसे कि मीटर में गाया जाता है और उसको जब लिखा तो उसको चार भागों में बांट दिया वेद को
उपनिषद
ओरिजिनली था एक ही वेद था ऋग्वेद उपनिषद बेसिकली सप्लीमेंट्री है वेदास उपनिषद होता है बेसिकली जो गुरु और शिष्य के बीच में जो संवाद है और गुरु जो शिष्य को शिक्षा देते शिष्य गुरु के पास बैठ गए
यहाँ
किस बार यहाँ तो नहीं है वो मंदिर में है टेम्पल हॉल में उपनिषद का मतलब है उपनिषद यानी कि शिष्य गुरु के पास बैठता है उप मतलब निकट निषद मतलब टीचर उसके पास बैठ के वो शिक्षा लेता है और क्या शिक्षा लेता है वेदों की शिक्षा लेता है तो ये उपनिषद बेसिकली वेदों के अंदर ही है जैसे कलिचंद्र उपनिषद बेसिकली अथर्ववेद के अंदर ही है एक पेज का है कलिचंद्र उपनिषद केवल एक या दो पेज का है लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रेजेंट किया गया हाईलाइट किया गया ये दिखाने के लिए उस वेद का एसेंस वो है
श्रुति के भाग हाँ लोग श्रुति पे ज़्यादा जोड़ देते हैं
हाँ श्रुति पे जोड़ देते श्रुति बेसिकली सुनने के लिए इट्स फॉर हियरिंग ये बड़ा अच्छा सा दिखा रहे हैं श्रुति का मतलब नॉलेज इज रिवील्ड इन हार्ट बाय हियरिंग एंड एक्सेप्टिंग सुनकर पहले तो सुने जाते थे ना वेद लिखे नहीं होते थे सुनते थे उसको श्रुति कहते हैं सुनकर उसको स्वीकार किया जाता है और न्याय शास्त्र क्या वेदांत सूत्र जब श्रवण ही पर्याप्त नहीं होता है तो न्याय के द्वारा ज्ञान जो है वो हृदय में प्रकट किया जाता है उसको कहते हैं न्याय वेदांत सूत्र और फिर स्मृति जिसमें पुराण इतिहास और महाभारत इसका उद्देश्य होता है कि हम उसको याद रखें और कैसे याद रखेंगे महाजन जो है बड़े बड़े जो महाभागवत है वो अपने जीवन से शिक्षा देते हैं, आदर्श के द्वारा साबित करते हैं, केस स्टडीज है उसमें बताया, इसी को समझा देते हैं। इसलिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वेदों का उच्चारण करने के लिए आपको क्वालिफाइड बनना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत बोल के अनर्थ कर सकते हैं, पहला कंफ्यूज भी, उसका उल्टा रिएक्शन भी मिल सकता है, नुकसान भी होता है गलत उच्चारण करने से, और ऐसे क्वालिफाइड ब्राह्मण्स है नहीं। इसलिए क्वालिफाइड हो या ना हो पुराण जो है सहायता करता है, पुराण उस केस में सेफ है, वेदों में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है उच्चारण करने वालों में, वेद तो भगवान के द्वारा ही निकलेगा, उसमें भी कमी है।
स्मृति को मानते नहीं शायद हमारे समाज के लोग, दे ओनली बिलीव इन स्मृति बट दे डोंट बिलीव इन स्मृति,
जिसको वो वास्तव में जिसका अभ्यास गलत कर रहे हैं उसको तो वो मान रहे हैं, जिसका अभ्यास किया जा सकता है उसको नहीं मान रहे, समस्या उनकी है हमारी नहीं है कि नहीं। जैसे यज्ञ तो कर लिए लेकिन डीटी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो फायदा क्या है, पर्पस क्या है, अर्थ क्या जानते नहीं, अर्थ भी नहीं बताते ना जानते, को
मंत्र बोलते
खुद जानेंगे तब दूसरों को बताएंगे, ये तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन डाल दिया था आज ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया रहे कि सब क्या, कोई कोई पूछ सकता है अपना बेसिक आइडिया तो होना चाहिए ना, ये थोड़ा कि सारे मुझे पढ़ेंगे भगवदगीता हमसे पढ़ी नहीं आती, मतलब ये सब समझने के बाद पता चलता है कि प्रभुपाद ने कितना आसान कर
दिया
आचार्य, इसलिए महाजनों ये नहीं करता सब बनता, जैसे महाजन करके गए, महाजनों ने शिक्षा दी है उसी के बारे में चर्चा कर ली, भाई बहुत पर्याप्त है। अल्टीमेटली उन्होंने बताया ना प्रस्थान तरह जो बताया, तीन रास्ते हैं आनंद की प्राप्ति के लिए, जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो उसमें जो बेसिकली स्मृति प्रस्थान है सबसे, श्रुति प्रमाण, श्रुति प्रस्थान में क्या दिक्कत है, आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा, न्याय में न्याय दर्शन में वेदांत सूत्र के लिए आपको विद्वान होना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे अपने आप, पढ़ते पढ़ते इसका फायदा। उपनिषद का तो ये बताया कि बेसिकली इट नेगेट्स द मटेरियल कंसेप्शन एंड फिलोसॉफिकली एस्टैब्लिश द ट्रांसेंडेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स especially the supremacy of the person, personal aspect of the Lord, तो भगवान का जो साकार रूप है, परम सत्य का जो साकार रूप है उसको स्थापित करता है उपनिषद, और जो भौतिक विचारधारा है उसका खंडन करता है उपनिषद, जो है
एक तरह से मायावाद को काटता है,
हाँ मायावाद को काटता है उसकी, लेकिन इसका भी दुरुपयोग किया गया ना, उपनिषदों का भी दुरुपयोग किया गया, उसका भी मायावाद दर्शन प्रस्तुत किया गया, उपनिषद कैसे है बेसिकली, जैसे एक चैप्टर है मान लीजिए, जैसे एक चैप्टर है, अब चैप्टर में कई डिटेल दिए हुए हैं इसमें, ये जो उसका हेडलाइन है ना बिकमिंग क्वालिफाइड, ये है
उपनिषद, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं होगा,
नहीं आप इससे समझ गए कि इस चैप्टर में है क्या, ये टाइटल ना होता तो आपको ये पता नहीं चलता इसमें क्या है, ये टाइटल है गायत्री बुक तो आपको पता है इस किताब में क्या है, गायत्री के बारे में चर्चा की गई, तो उपनिषद में ऐसा है
टाइटल है
बेसिकली, तो जो चार वेद है उसको बेसिकली टाइटल फॉर्म में दिया है, टाइटल दिया हुआ है, तो उसको टाइटल को समझ जाए व्यक्ति तो समझ जाएगा कि इसका उस कंटेंट क्या है उसका, इस तरह से चक्कर है। तो उपनिषद बेसिकली सबके लिए है लेकिन वेद जो है वो सबके लिए नहीं है, क्योंकि जैसे सबके लिए नहीं है किताब में क्या लिखा हुआ है तो सारा कुछ, लेकिन ये तो अब सबके लिए है। ये सब समझ सकते हैं। हाँ, गायत्री बुक है, गायत्री बुक तो इस तरह से। तो बेसिकली प्रभुपाद ने जिन उपनिषदों की चर्चा की है या भक्ति ठाकुर ने पब्लिश किया जैसे, उसमें भक्ति संबंधित है चर्चा, भगवत चर्चा है, इसलिए उसको स्वीकार किया।
तंत्रों का जैसे बोला उसमें राधा तंत्र भी
है। हाँ, वो अलग है, शिव जी और दुर्गा जी के बीच में संवाद है जैसे भैया। हाँ, इसमें लिखा हुआ है जैसे शिव जी और दुर्गा जी के बीच में संवाद है ये तंत्रों में।
अरे, इसका नाम इसमें आया था जब आप उसके बारे में गायत्री दिशा में बता रहे थे कि इसको बोलने से पहले अगर हरि नाम में बोलेंगे।
हाँ, राधा तो
फिर देन इट वुड बिकम द लैंड।
हाँ, गायत्री का अब गायत्री का लाभ नहीं मिलेगा उसका, गोपाल मंत्र का लाभ नहीं मिलता है। तंत्र में लिखा था उसको क्या लिखा है तो बता ही दिया था वैसे। लेकिन माइनर स्क्रिप्चर डिस्क्राइबिंग रिचुअल्स रिटन मोस्टली फॉर दोज इंपोर्टेंट इन्फ्लुएंस, तो तामसी के उनके लिए होता है बेसिकली। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, लिटरेचर कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ डायलॉग्स बिटवीन शिव एंड दुर्गा, दुर्गा जी और शिव जी के बीच में संवाद, कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन डिटी वर्शिप, अर्चे वगैरह की सेवा एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और भी जैसे विषय आध्यात्मिक विषय, स्पेशल हिम्स फॉर कंजरिंग मैजिक और प्रोड्यूसिंग मिस्टिकल इफेक्ट्स। जादू टोना वैसे तान सिंह लोग नहीं होता तंत्र, और लोग करते भी हैं आज भी करते हैं, लाभ मिलता है उसको, तांत्रिक विद्या है। उद्देश्य ये होता है, उद्देश्य ये होता है कि इस बारे में लोग शिव जी की दुर्गा जी की पूजा करें, चलो तांत्रिक विद्या लगा और कोई बात नहीं था, तो काम सीख है, लेकिन किसी को तो अथॉरिटी मांगना रहा, वो शास्त्रों के थ्रू जा रहा है तो धीरे 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 उसका एलिवेशन हो पाएगा, प्रोग्रेस करेगा, लंबा रास्ता है, लेकिन कम से कम स्क्रिप्चर को तो एक्सेप्ट किया उन्होंने, है कि नहीं। स्क्रिप्चर से बाहर तो नहीं करना ना कुछ, जैसे कोई अगर बलि चला रहा है, काली की बलि चढ़ाता है तो शास्त्रों के आधार पर किया जाता है, एक तो होता है, दूसरा होता है कि रोज ही काटता है, तो डिफरेंस है ना। लेकिन कलयुग में वर्जित है, अश्वमेधम ग्वालम्बम संन्यास, नॉर्मल संन्यास बना है, लेकिन वेद संन्यास, वैष्णव संन्यास होती है।